पृष्ठ संख्या 219, सोवियत संघ अर्थव्यवस्था में विफलता। सोवियत संघ ने फांसीवाद को परास्त करके द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने में जो भूमिका निभाई थी, उससे उसे पूरे विश्व में फांसीवाद का विरोध करने वालों की प्रशंसा प्राप्त हुई थी। सोवियत संघ के लोगों के लिए यह महान देशभक्ति युद्ध था, जिसे जीतने के लिए उन्होंने हर संभव बलिदान दिया था। इस युद्ध में सोवियत संघ को सबसे अधिक क्षति उठानी पड़ी थी। उसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी। युद्ध समाप्त होते ही सोवियत संघ ने अपने देश में पुनर्निर्माण के जबरदस्त प्रयास शुरू कर दिए। 1946 में चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई और 1940 वाला दशक समाप्त होते होते औद्योगिक उत्पादन युद्ध से पहले के स्तर पर पहुंच गया। कृषि का अधिक मशीनीकरण करके तथा पहले से अधिक संख्या में सामूहिक फॉर्म स्थापित करके 1950 वाले दशक के आरंभ तक कृषि उत्पादन को भी युद्ध से पहले के स्तर तक पहुंचा दिया गया। आगे चलकर एक के बाद एक पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सोवियत अर्थव्यवस्था के विकास को जारी रखा गया और सकल राष्ट्रीय उत्पादन की दृष्टि से शीघ्र ही यह अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बन गई। लेकिन इस विकास के बावजूद सोवियत अर्थव्यवस्था हमेशा कई गंभीर समस्याओं से ग्रस्त रही। भारी उद्योगों पर जोर देने से एक मजबूत आधारभूत ढांचा तो बन गया था, किंतु उपभोक्ता वस्तु उद्योग देश की जरूरतें पूरी कर पाने में बहुत पीछे रह गया था। इस अनुपातहीनता का परिणाम यह हुआ कि अपनी आर्थिक शक्ति के बावजूद यहाँ के लोगों के जीवन स्तर में सुधार की गति पश्चिम के उन्नत देशों के मुकाबले बहुत धीमी रही। 1980 के दशक के मध्य में सोवियत नेता यह स्वीकार करने लगे कि उनके देश की अर्थव्यवस्था जहाँ की तहाँ ठहरी हुई थी। कृषि के क्षेत्र में अस्पष्ट रूप से विफलता साफ दिखाई दे रही थी। रक्षा तथा अंतरिक्ष अनुसंधान को छोड़कर प्रौद्योगिकी के अन्य सभी क्षेत्रों में सोवियत संघ उन्नत पूंजीवादी देशों से पीछे था। उस समय की स्थिति यह थी कि जब तकनीकी तथा वैज्ञानिक जनशक्ति की संख्या अन्य देशों की तुलना में सोवियत संघ में सबसे अधिक थी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सोवियत संघ की विफलता का कारण कमान प्रणाली कही जाने वाली पद्धति थी। सोवियत संघ ने जिस आर्थिक आयोजना की पद्धति को अपनाया, वह अति विकेंद्रीयकरण से ग्रस्त थी और उसने व्यक्तिगत औद्योगिक उद्यम के स्तर पर जन साधारण द्वारा पहल करने की सारी प्रवृत्ति को कुंठित कर दिया था। कुछ उद्योगों में कुछ वस्तुओं का उत्पादन मांग कम होने के बावजूद अधिक मात्रा में होता था। उत्पादों की कीमतें कृत्रिम रूप से तय की जाती थी, जिससे अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा था। अर्थव्यवस्था के दोषों को दूर करने और उसे लोगों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ में एक गंभीर बहस आरंभ हुई। लेकिन इन परिवर्तनों से भी गतिहीनता दूर नहीं हुई, जैसा पहले ही बताया जा चुका है। 1991 में सोवियत संघ बिखर गया। आर्थिक क्षेत्र की विफलता को सोवियत संघ के टूटने का एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। सैनिक शक्ति के क्षेत्र में सोवियत संघ का प्रभाव कमोवेश संयुक्त राज्य के बराबर ही था। सोवियत संघ ने अन्य क्षेत्रों की तुलना में सैन्य आवश्यकताओं से संबंधित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति की और इस दृष्टि से वह विश्व की उन्नत से उन्नत प्रौद्योगिकी की बराबरी कर सकता था। अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास की स्थिति भी ऐसी ही थी। सच तो यह है कि इस दौर के सोवियत संघ अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष अनुसंधान से भी आगे माना जाने लगा था। इसके कई प्रमाण सामने आए। अंतरिक्ष में सबसे पहला उपग्रह सोवियत संघ ने ही भेजा। उसने सबसे पहले मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने में भी कामयाबी हासिल की। इतना ही नहीं, आगे चलकर अंतरिक्ष में पहला स्टेशन भी सोवियत संघ ने ही स्थापित किया, जिसमें काफी समय तक मनुष्यों को ठहराया जा सकता था। सेना तथा शस्त्रास्त्र प्रौद्योगिकी पर सोवियत संघ द्वारा भारी खर्च करने के बाद सैन्य शक्ति के क्षेत्र में वह संयुक्त राज्य की बराबरी के स्तर पर आ गया। कहा जा सकता है कि इस प्रकार उसने विश्व में शक्ति संतुलन बनाए रखा। एक समय सोवियत संघ द्वारा सैन्य शक्ति को दी जाने वाली प्राथमिकता को इस आधार पर उचित ठहराया कि उसके इस कदम ने संयुक्त राज्य को दुनिया पर अपनी मर्जी थोपने से रोका था। लेकिन यह बात सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का प्रमुख कारण सिद्ध हुई, क्योंकि उसने अपने विशाल संसाधनों का आर्थिक हित के लिए उपयोगी और लाभदायक प्रयोग नहीं किया। राजनीतिक घटनाचक्र। बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ के राजनीतिक घटनाचक्र की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया जा चुका है। 1930 के दशक के उत्तरार्ध तक स्टालिन सोवियत संघ पर भली भांति अपनी तानाशाही कायम कर चुका था। युद्ध के बाद भी उसकी तानाशाही निष्ठुरता में कोई कमी नहीं आई। स्टालिन सोवियत साम्यवादी दल के सर्वोच्च नेता के रूप में शासन कर रहा था, लेकिन साम्यवादी दल और इसके विभिन्न संगठन जैसे पोलियो ब्यूरो स्टालिन के निर्णयों पर केवल मुहर लगाने वाली समिति बनकर रह गई थी। दल के संविधान के अनुसार हर 4 साल बाद दल की एक आम सभा कांग्रेस आयोजित करना अनिवार्य था, लेकिन 1939 के बाद दल की पहली सभा 13 साल पश्चात 1952 में आयोजित हुई थी। 1930 और 1940 के दशकों के दौरान बोल्शेविक क्रांति का प्रत्येक नेता मर चुका था अथवा मार दिया गया था। दमन की प्रणाली को संस्थागत रूप से दिया गया था। हर विरोधी राय को देशद्रोह माना जाता था। हजारों लोगों को श्रम शिविरों में भेज दिया गया था और हजारों जेल में पड़े सड़ रहे थे। सोवियत सुरक्षा पुलिस दमन का एक महत्वपूर्ण उपकरण बन चुकी थी। दमन से बौद्धिक जीवन, कला, संस्कृति तथा विज्ञान को भारी क्षति हुई। सोवियत संघ में जीव विज्ञान पूरी तरह नष्ट हो गया था, क्योंकि स्टालिन को सोवियत जीव विज्ञान की कृतियों में बुर्जुआ प्रवृत्ति दिखाई देती थी और उसके विचार से इसका दमन करना जरूरी था। जनवरी 1953 में 9 डॉक्टरों पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने 1948 में एक सोवियत नेता की हत्या की थी। यह आरोप भी लगाया गया कि उन्होंने उन अनेक बड़े सैनिक अधिकारियों के स्वास्थ्य को भी क्षति पहुंचाने की साजिश की थी जिनका वे इलाज कर रहे थे। इन डॉक्टरों की गिरफ्तारी को दमन के एक और दौर की शुरुआत होने का संकेत माना गया, किंतु मार्च 1953 में स्टालिन की मृत्यु हो गई। आतंक की समाप्ति। स्टालिन की मृत्यु के कुछ समय पश्चात अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। निकिता खुश्चरेव सोवियत साम्यवादी दल का प्रथम सचिव बना। व्यापक दमन की नीति को समाप्त कर दिया गया। डॉक्टरों को रिहा कर दिया गया। कहा गया कि उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी थी। उन हजारों लोगों को रिहा करके उनका पुनर्वास किया गया जिन्हें राज्य के खिलाफ विभिन्न प्रकार के अपराध करने के आरोप में श्रम शिविरों तथा जेलों में डाल दिया गया था। फरवरी 1956 में सोवियत साम्यवादी दल की 20वीं आम सभा कांग्रेस बुलाई गई। इस कांग्रेस को आंतरिक राजनीतिक और आर्थिक नीतियों के साथ साथ विदेश नीति में बड़े परिवर्तन करने तथा खुश्चरेव द्वारा स्टालिन के राज्य में दल और जनता के प्रति हुए अपराधों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के कारण काफी प्रसिद्धि मिली। यद्यपि यह रिपोर्ट कांग्रेस के एक गोपनीय सत्र में प्रस्तुत की गई थी और इसे जारी नहीं किया गया था, किंतु शीघ्र ही यह विश्व भर में प्रख्यात हो गई। यद्यपि इस घटनाचक्र के बाद भी सोवियत संघ में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था कायम नहीं हुई और ना ही पूर्ण बौद्धिक एवं नागरिक स्वतंत्रता स्थापित हुई, तब भी आतंक और सर्वव्यापी दमन का युग समाप्त हो चुका था। यह परिवर्तन दो उपन्यासों में विशेष रूप से प्रतिबिंबित हुआ। एक था इलिया एहरेनवर्ग का उपन्यास द थॉ, बर्फ का पिघलना, और दूसरा था अलेक्जेंडर सोल्जनित्सिन का वन डे इन द लाइफ ऑफ इवान देनिसोविच। इवान देनिसोविच के जीवन का एक दिन, इसमें श्रम शिविरों में जीवन का वर्णन किया गया था। सोल्जन ने, जिसे बाद में साहित्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कई वर्ष विदेशों में बिताए थे और वह 1994 में स्वदेश लौटा। 2008 में उसकी मृत्यु हुई, तथापि नागरिक स्वतंत्रता, प्रकाशनों, विदेशी यात्राओं पर प्रतिबंध जारी रहा और 20वीं कांग्रेस के लगभग 30 वर्ष बाद भी अनेक दमनकारी कार्रवाइयां जारी रही। 1964 में खुश्चरेव को अपदस्थ कर दिया गया और लियोनिद ब्रेजनेव साम्यवादी दल का प्रथम सचिव बना। 1970 के दशक के आरंभ से वह सोवियत संघ का सर्वोच्च नेता बन गया। 1960 और 1970 वाले दशकों में कई आर्थिक सुधार आरंभ किए गए, लेकिन उनसे अर्थव्यवस्था में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुए। ब्रेजनेव के शासनकाल को, जो 1982 तक चला, सामान्यतया गतिहीनता का काल माना जाता है। दमन की नीति का पूरी तरह उन्मूलन करके और उसके स्थान पर सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की कार्यवाही 1985 में उस समय शुरू हुई जब मिखाइल गोरबाचेव को दल का नेता और बाद में सोवियत संघ का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। गोरबाचेव द्वारा आरंभ किए गए परिवर्तनों को बहुधा दूसरी सोवियत क्रांति की शुरुआत कहा जाता था। इन परिवर्तनों को दो रूसी शब्दों, ग्लासनोस्त खुलापन और पेरेअस्त्रोइका पुनर्निर्माण द्वारा सबसे अच्छी तरह वर्णित किया जाता है। ग्लासनोस्त की नीति का अर्थ है प्रत्येक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विषय पर खुली चर्चा और नागरिक स्वतंत्रता पर लगे प्रतिबंधों की समाप्ति। साम्यवादी दल की जकड़ को शिथिल किए हुआ था और 1990 में गैर साम्यवादी दल बनाने की अनुमति दे दी गई। पेरेअस्त्रोइका पुनर्निर्माण सोवियत अर्थव्यवस्था की गतिहीनता को दूर करने का प्रयास था, लेकिन इस मामले में अधिक सफलता नहीं मिल पाई और वहां की आर्थिक स्थिति में अधिक गिरावट आने लगी। साम्यवादी दल की जकड़ कम करने से वहां तत्काल कोई अस्थिर लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था कायम नहीं हुई। इस बीच सोवियत संघ में शामिल विभिन्न गणतंत्र अधिक स्वायत्त और कुछ पूर्ण स्वतंत्रता की भी मांग करने लगे। इसके बाद शीघ्र ही सोवियत संघ विखंडित हो गया। विदेश नीति। सोवियत संघ की विदेश नीति पर इस बात का गहरा प्रभाव पड़ा कि अपने उद्भव काल से ही यह ऐसे देशों से घिरा रहा था जो उसके प्रति तथा उस सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के प्रति खुल्लम खुल्ला शत्रुता दर्शाते थे, जिनके निर्माण के लिए वह प्रयत्नशील था। 1920 और 1930 के दशकों में वह एकमात्र ऐसी बड़ी शक्ति था जिसने उपनिवेशों की जनता को उनके स्वतंत्रता संघर्ष में पूरा समर्थन दिया था। 1930 के दशक में वह फांसीवादी और फांसीवाद अतिक्रमणों का तब तक विरोध करता रहा था जब तक कि जर्मनी के साथ उसकी अनाक्रमण संधि नहीं हो गई। इस अवधि में उसकी मित्र शक्तियों में विभिन्न देशों के साम्यवादी दल शामिल थे जो सोवियत संघ की रक्षा को अपना कर्तव्य समझते थे। सोवियत संघ ने फांसीवाद को पराजित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। युद्ध में अपनी भूमिका के लिए उसने जो व्यापक सद्भावना अर्जित की थी, उसे उसकी पूर्वी देशों के प्रति अपनाई गई नीति के कारण गहरा आघात लगा, जहां उसके समर्थन से जबरदस्ती साम्यवाद दलों का शासन थोप दिया गया। इनमें से कुछ देशों में स्वतंत्रता के समय तथा स्वतंत्रता के पश्चात बनाई गई संविद सरकारों के सहभागी के रूप में साम्यवादी दलों को काफी जन समर्थन प्राप्त था, लेकिन जब वे अलोकतांत्रिक उपाय अपनाकर इन देशों पर अपना एक छत्र शासन स्थापित करने लगे तो जनता उनसे विमुख हो गई। बाद में स्टालिन के प्रभाव और दबाव के कारण इन देशों में वैसा ही दमन चक्र खड़ा किया गया जैसा स्टालिन ने सोवियत संघ में खड़ा किया था। 1948 में यूगोस्लाविया द्वारा सोवियत संघ का नियंत्रण मानने से इनकार करने पर उसे विश्व साम्यवादी आंदोलन से निकाल दिया गया। इसके बाद पूर्वी यूरोप के देशों के कुछ अति प्रसिद्ध नेताओं को इस आरोप में निष्कासित कर दिया गया कि वे यूगोस्लाव साम्यवादियों के नेता टीटो को एजेंट थे। स्टालिन की मृत्यु होने तक पूर्वी यूरोप की सरकारों और साम्यवादी दलों में हस्तक्षेप का सिलसिला जारी रहा। युद्ध के शीघ्र बाद के काल में साम्यवादी दलों ने क्रांति भड़काने की कोशिश की। विश्वास किया जाता है कि इनमें से कुछ ने स्टालिन के इशारे पर ऐसे प्रयास किए थे। वास्तव में उन देशों पूर्वी यूरोप और उत्तर कोरिया को छोड़कर जिन्हें सोवियत नेताओं ने मुक्त कराया था, अन्य देशों चीन, वियतनाम, क्यूबा में साम्यवादियों ने सत्ता स्टालिन या सोवियत संघ के भड़काने या हस्तक्षेप से प्राप्त नहीं की थी। स्मरणीय है कि इस काल में सभी साम्यवादियों को संयुक्त राज्य की सैनिक शक्तियों का समर्थन प्राप्त था और संयुक्त राज्य ने कई देशों में राष्ट्रवादी तथा क्रांतिकारी शासनों को समाप्त करने और निरंकुश सरकारों की स्थापना के लिए बार बार अपनी शक्ति का प्रयोग किया था। लेकिन यह भी सत्य है कि सोवियत नीति से शीत युद्ध में कोई कमी नहीं आई और ना ही बड़ी ताकतों की आपसी तनातनी समाप्त हुई। स्टालिन के बाद सोवियत विदेश नीति में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि वह अलग-अलग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं का अनुसरण करने वाले देशों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर जोर देने लगा। वैसे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति भारत जैसे नव स्वतंत्र देशों द्वारा अपनाई गई गुटनिरपेक्ष नीति की प्रमुख विशेषता थी। लेकिन सोवियत विदेश नीति में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति खुश्चरेव की देन थी। साम्यवादी हमेशा से यह मानते आए थे कि भले ही वे युद्ध को राष्ट्रीय नीति के उपकरण के रूप में अपनाने के खिलाफ थे, किंतु जब तक साम्राज्यवाद कायम है तब तक युद्ध अवश्यंभावी है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का तात्पर्य युद्ध की अवश्यंभाविता के सिद्धांत को त्यागना था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेताओं के साथ सोवियत नेताओं ने भी इस पर जोर दिया कि आज की परिस्थिति में युद्ध समाप्त मानवता को मिटा देगा और इसलिए उसके स्थान पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति और अलग-अलग सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की नीति अपनाई जानी चाहिए। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में सोवियत संघ ने निरस्त्रीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किए, लेकिन जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, निरस्त्रीकरण या युद्ध की संभावना खत्म करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन द्वारा निरस्त्रीकरण के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों को सोवियत संघ लगभग बराबर समर्थन देता था और कुछ निरपेक्ष देशों ने तो यहाँ तक कहा कि सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सहज मित्र हैं। सोवियत विदेश नीति कई नव स्वतंत्र देशों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता को मजबूत बनाने और कई स्वतंत्रता आंदोलन को शक्ति प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुई। सोवियत संघ ने उन्हें राजनीतिक समर्थन ही नहीं दिया, बल्कि विभिन्न सामग्रियां देकर भी उनकी सहायता की। माना जाता है कि सोवियत संघ ने नव स्वतंत्र देशों के साथ अपने आर्थिक संबंधों के कारण उनकी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान दिया, लेकिन शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति के समर्थन देने के कारण साम्यवादी आंदोलन में 1950 के दशक के उत्तरार्ध में दरार उत्पन्न होने लगी, जो 1960 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू हुआ था। माओ जेडोंग के नेतृत्व में चीनी साम्यवादी दल युद्ध की अवश्यंभाविता के सिद्धांत पर अडिग रहा। माओ जेडोंग ने कहा कि परमाणु युद्ध में भले ही लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे, किंतु विजय समाजवाद की ही होगी। कुछ चीनी साम्यवादी नेताओं और अन्य देशों के साम्यवादी दलों में उनके समर्थकों का विचार था कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति से समाजवादी क्रांति के लिए चल रहा संघर्ष कमजोर पड़ जाएगा। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत के बावजूद सोवियत संघ ने संयुक्त राज्य के मुकाबले में अपने शस्त्रागार को विनाशकारी हथियारों से भरने में कोई कमी नहीं आने दी। लेकिन उसने कुछ एक तरफा निर्णय अवश्य लिए। उदाहरण के लिए उसने घोषणा की कि वह परमाणु अस्त्र का प्रयोग करने में कभी पहल नहीं करेगा। साथ ही उसने संयुक्त राज्य से भी ऐसा ही वचन देने के लिए कहा। उसने परमाणु अस्त्रों का भूगर्भीय परीक्षण बंद कर दिया और घोषणा की कि जब तक दूसरा पक्ष यह परीक्षण नहीं करता, तब तक वह भी दोबारा ऐसे परीक्षण नहीं करेगा। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की दुहाई देने के बावजूद पूर्वी यूरोप के प्रति सोवियत नीति में कोई बदलाव नहीं आया। कहा जा सकता है कि उसने पूर्वी यूरोप को अपना प्रभाव क्षेत्र मानना जारी रखा। दो अवसरों पर उसने बड़े पैमाने पर सैनिक कार्रवाइयाँ की, 1956 में हंगरी में और 1968 में चेकोस्लोवाकिया में। इन कार्रवाइयों का उद्देश्य उन देशों के साम्यवादी नेतृत्व को अपदस्थ करना था, जो अपने देशों में सोवियत नेताओं द्वारा सुझाई गई दिशा से विपरीत परिवर्तन करना चाहते थे। जब खुश्चरेव के स्थान पर आए ब्रेजनेव ने यह घोषणा कर दी कि अगर किसी समाजवादी देश में समाजवादी व्यवस्था खतरे में पड़ जाए, तो उसमें हस्तक्षेप करना दूसरे समाजवादी देशों का कर्तव्य है। गोरबाचेव के सत्तारूढ़ होने पर सोवियत विदेश नीति में बुनियादी परिवर्तन आए। अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप का हम उल्लेख कर चुके हैं। इस लड़ाई के कारण सोवियत संघ एक लंबे गृहयुद्ध में उलझ गया। इससे सोवियत अमेरिकी संबंधों में भी कटुता आई और तनाव कम करने की प्रक्रिया में बाधा पड़ी। 1988 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं हटानी शुरू कर दी और 1989 तक अफगानिस्तान से सारे सोवियत सैनिक लौट चुके थे। तथापि सोवियत सेनाओं के हटने के बाद भी अफगानिस्तान में शांति स्थापित नहीं हुई और वहां गृहयुद्ध लगातार जारी रहा। 1996 में तालिबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और 2001 में संयुक्त राज्य के नेतृत्व वाली सेनाओं ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। सोवियत संघ ने संयुक्त राज्य के साथ दो महत्वपूर्ण शस्त्रास्त्र नियंत्रण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस अवधि की एक महत्वपूर्ण घटना पूर्वी यूरोप के देशों पर सोवियत नियंत्रण की समाप्ति थी। इसके फलस्वरूप इन सभी देशों में साम्यवादी दलों का शासन समाप्त हो गया। 1991 में सोवियत संघ के नेतृत्व में गठित सैनिक गुट वर्सा गठबंधन को विधिवत भंग कर दिया गया। गोरबाचेव की घरेलू और विदेशी दोनों नीतियों का पूरी दुनिया में स्वागत हुआ। उसके द्वारा विदेश नीति के क्षेत्र में उठाए गए कदम शीत युद्ध की समाप्ति में निर्णायक सिद्ध हुए और गोरबाचेव को 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। सोवियत संघ का विखंडन। गोरबाचेव की आर्थिक नीतियां विफल रही और गणतंत्रों ने अपनी आंतरिक और बाहरी नीतियों में अधिक स्वायत्तता की मांग शुरू कर दी। 1990 के अंत तक अस्पष्ट हो गया था कि सोवियत संघ एक राष्ट्र के रूप में कायम नहीं रह पाएगा। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के तीन बाल्टिक राज्य स्वतंत्र होने का फैसला कर चुके थे और अन्य गणतंत्र संघ के कानूनों की उपेक्षा और अपने कानूनों को प्रमुखता देने का फैसला कर चुके थे। 1990 के अंत तक स्पष्ट हो गया था कि सोवियत संघ एक राष्ट्र के रूप में कायम नहीं रह पाएगा। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के तीन बाल्टिक राज्य स्वतंत्र होने का फैसला कर चुके थे और अन्य गणतंत्र संघ के कानूनों की उपेक्षा और अपने कानूनों को प्रमुखता देने का फैसला कर चुके थे। गोरबाचेव ने सोवियत संघ को टूटने से बचाने के लिए 10 गणतंत्रों को एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी किया। इस संधि से गणतंत्रों को अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती और साथ ही सोवियत संघ भी अखंड बना रहता। लेकिन इस संधि पर हस्ताक्षर होने से पहले ही सोवियत साम्यवादी दल के कुछ नेताओं ने 19 अगस्त 1991 को गोरबाचेव को राष्ट्रपति पद से हटाकर उसे अपने ही घर में नजरबंद करके राज्य विप्लव द्वारा सत्ता हथियाने की कोशिश की। इस राज्य विप्लव का व्यापक विरोध हुआ, यहाँ तक कि सेना भी इसके विरुद्ध थी। अंततः 21 अगस्त 1991 को इसे विफल कर दिया गया। तथापि गोर्बाचेव ने दोबारा राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाल लिया, किंतु राज्य विप्लव के फलस्वरूप सोवियत संघ के बिखराव की प्रक्रिया तेज होने लगी। बोरिस एल्तसीन, जिसे रूसी गणतंत्र का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, इस दौर के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में उभर कर सामने आया। उसने राज्य विप्लव को विफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गोर्बाचेव ने साम्यवादी दल से त्यागपत्र दे दिया और दल की समस्त गतिविधियों को स्थगित कर देने का आदेश जारी किया। गोर्बाचेव द्वारा एक नई संधि के आधार पर सोवियत संघ को टूटने से बचाए रखने के प्रयास का नतीजा शून्य रहा। नवंबर 1991 तक 15 से 13 गणतंत्रों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। दिसंबर 1991 के आरंभ में रूसी अध्यक्ष बोरिस एल्तसीन ने दो अन्य गणतंत्रों के प्रधानों के साथ घोषणा की कि सोवियत संघ का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। उन्होंने अन्य गणतंत्रों को एक नए संघ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस संघ को स्वतंत्र राज्य के भारतीय संघ, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की संज्ञा दी गई। 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया और इसी के साथ औपचारिक रूप से सोवियत संघ का अस्तित्व समाप्त हो गया। उसके स्थान पर अब 15 स्वतंत्र राज्य थे, जिनको मिलाकर समाजवादी सोवियत गणतंत्र बना। उनमें से 12 गणतंत्र, जिनमें 4 एशियाई गणतंत्र भी शामिल हैं, स्वतंत्र राज्यों के भारतीय संघ, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के अध्यक्ष बन गए। जॉन रीड नाम के एक अमेरिकी पत्रकार ने अपनी पुस्तक 10 डेज दैट शुक द वर्ल्ड, वे 10 दिन जिन्होंने दुनिया को हिला दिया, में 1917 की रूसी क्रांति का आंखों देखा वृतांत प्रस्तुत किया। सोवियत संघ के विशाल क्षेत्र में, जो पहले रूसी साम्राज्य का हिस्सा था, जिस प्रकार के समाजवाद की रचना की गई, उसे बहुत समय तक पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था का विकल्प समझा जाता था। वास्तव में अस्तित्वमान समाजवाद के अंत और सोवियत संघ के विघटन की घटनाएं, जिनकी केवल कुछ एक व्यक्तियों ने ही कल्पना की थी, अचानक ही घटी और इनकी अधिक विरोध भी नहीं हुआ। माना जा रहा था कि इन घटनाओं के परिणाम संभवतया उसी तरह दुनिया को हिला देंगे जैसा कि 1917 की रूसी क्रांति के परिणाम थे। निश्चित रूप से इन घटनाओं से विश्व इतिहास का एक युग समाप्त हो गया। विघटन के बाद रूस, सोवियत संघ के विघटन के बाद अनेक पुराने सोवियत गणराज्यों में उथल पुथल शुरू हो गई। उनमें से कुछ थे सरकार के भूतपूर्व प्रमुखों ने, जो साम्यवादी दल के नेता भी थे, स्वयं अपनी तानाशाही सत्ता स्थापित कर ली। कुछ अन्य सभी भी अस्थिर लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश कर रही है। रूस में 1999 के अंत तक का काल, जब एल्तसीन राष्ट्रपति था, अत्यधिक कठिनाई भरा था। इसी दौरान गंभीर आर्थिक संकट, खरबपति बनने के लिए देश को लूटने खसोटने वाले माफिया प्रकार के आर्थिक अल्पतंत्रवादी उभर रहे थे। यह आम जनता के लिए अत्यधिक कठिनाइयों का काल था, जब कानून व्यवस्था लगभग पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गई थी। व्लादिमीर पुतिन के राष्ट्रपतित्व काल में आर्थिक सुधार हुए और रूस पुनः एक बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में उभरने लगा। सोवियत संघ के टूटने के बाद विघटन के बुरे प्रभाव दूर होने लगा और देश में दोबारा सुरक्षा और अस्थिरता की भावना कायम हुई। एक बार फिर रूस विश्व के मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। हाल ही के वर्षों में एक प्रमुख बात जो सामने आई है, वह नाटो में अधिक विस्तार करके इसमें सोवियत संघ के पुराने मित्र देशों को सदस्य के रूप में शामिल करने की पश्चिमी देशों की नीति तक, तथा चेक गणराज्य और पोलैंड में संयुक्त राज्य की मिसाइलें तैनात करना शामिल है। रूस और सोवियत संघ के कुछ भूतपूर्व गणराज्यों, जैसे यूक्रेन और जॉर्जिया के आपसी संबंधों में भी तनाव बना हुआ है। रूसी संविधान के अनुसार कोई भी राष्ट्रपति 2 कार्यकाल से अधिक समय तक अपने पद पर बना नहीं रह सकता है। 2008 में हुए चुनावों के पश्चात मेदवेदेव रूस का राष्ट्रपति बना और पुतिन ने प्रधानमंत्री का पदभार संभाला।